हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के 18 मार्च के संध्या जागृति में आपका बरसाना में स्वागत है। गौर पूर्णिमा इज कमिंग। गौर पूर्णिमा से संबंधित एक लीला पीली पोकर से संबंधित है। आपने सुनी होगी पहले कथाओं में, लेकिन दोबारा बताना भी पर्याप्त है, मतलब योग्य है, योग्य है। तो जब राजा रानी ने यहाँ पर हाथ धोए, सबको पता है ना, वो हाथ धोए तो पीली हो गई पोखर। तो कृष्ण भगवान को नंदगांव में बहुत देर रहने को नहीं होता है। नंदगांव में ज़्यादा रह सकते ही नहीं हो, किसी न किसी बहाने में आ जाते हैं। क्या क्या बनते हैं बताओ यहाँ पे आने के लिए? मोर बनते हैं, क्या सखी, वही हाँ सखी बनते हैं। सखी तो सब में सखी ही बनते हैं, लेकिन सखी में फिर अलग 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 होता है। सखी तो स्थाई भाव है, मतलब सखी तो बनना ही है। एक चूड़ी लेके बनते हैं, चूड़ी बेचने वाली, और क्या बनती है? एक चूड़ी बेचने वाली बनती है, एक फूल बेचने वाली बनती है, एक हाथ देखने वाले ज्योतिष बन के आते हैं, ब्रह्मचारी बनकर आते हैं, एक बार साधु बनकर आते हैं, और भंगीन बनकर भी आते हैं, फूल वाले बनकर भी आते हैं, ऐसे बहुत सारे बेस बना के आते हैं। तो वैसे ही आ जाते हैं वो, मतलब उनको राधा रानी के दूर रहना उनके लिए मुमकिन नहीं है बहुत देर तक। तो कुछ ना कुछ बहाने बन जाए। कभी कभी ऐसे आते हैं, मालूम है, ऐसे आते हैं और गली में खड़े हो जाते हैं और कंकड़ बिनने लगते हैं इधर से उधर। तो उसके पहले ऐसे खड़े हो जाते हैं तो लोग बोलते, अरे महाराज तू ठाड़े हो रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं नहीं कंकड़ बेच रहा हूँ इधर, कंकड़ बेच रहा हूँ। फिर कंकड़ बेचने लगते हैं, फिर जाते हैं पूछने वाले, फिर हाथ आकते रहते हैं कि आएगी वहाँ से, फिर कोई पूछेगा तो फिर कंकड़ बेचने लगते हैं। इतने बावड़े रहते वो इधर बरसाने में। तो वैसे उनको रहा नहीं गया तो वो आ गए और देखते तो क्या पीली पोखर का पानी पीला हो गया। तो बड़ा आश्चर्य लगा उनको, अरे कल तक तो सही था, अभी आज पीला कैसे हो गया? तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि पीला कैसे हो गया, ये पीली वस्तु क्या है? तो वो ऐसे करते करते पीली पोखर में उतरने लगते हैं और उतरते उतरते भी वही पुकार रहे हैं, पीली वस्तु क्या है, ये पीली वस्तु क्या है, व्हाट इज द येलो सब्सटेंस। तो उसके बाद में क्या होता है, दोनों हाथ ऊपर और दो हाथ के पंजे खाली पानी के ऊपर और मोर पंख पानी के ऊपर, दो हाथ के पंजे और बीच में मोर पंख, ऐसे पानी में पूरा डोल रहा है सब जगह पे, पूरा पीली पोखर पे ये तीन चीज घूम रही है और आवाज आसमान में गूंज रही है, पीली वस्तु क्या है, पीली वस्तु क्या है। आप लोगों को ये कहानी याद रहनी चाहिए वर्ड टू वर्ड, हाँ, इसलिए मन अभी कुछ देर के लिए हटा देना, कोई टेबल खराब हो गया, कुर्सी खराब हो गई, सामान लाना है, कोई दवाई बेचनी है, ऑपरेशन करना है, कुछ देर के लिए थोड़ा बाजू में रखना उसको और लीला में मन लगा देना पूरा। हाँ, जैसे ठाकुर जी का लगा हुआ है, वो एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन सा पेड़ है, इसमें कौन से फल पूछे, ऐसा नहीं पूछ रहे हूँ, एक ही वस्तु पूछ रहे हैं, पीली वस्तु क्या है बताओ। उनकी आवाज़ सुनकर सब ब्रजवासी लोग इकट्ठा हो जाते हैं चारों तरफ, वो सुनते हैं किसकी आवाज़ आ रही है, देख रहे हैं तीन चीज़ें पानी के ऊपर घूम रही है। और बाद में फिर बाहर आते हैं वो जब बाहर आते हैं तो पूरी तरह से पीले हो जाते हैं, पीले मतलब स्वर्ण कांति, गोल्डन येलो, खाली येलो नहीं, अपना येलो ऐसा नहीं, चमकता हुआ सुनहरा रंग जो राधा रानी का रंग है, राधा रानी की कांति है, सुनहरी कांति, गौर वर्ण, स्वर्ण गौर। फिर भी पूछते रहते हैं ये पीली वस्तु क्या है, उस पीली वस्तु से पूरे ढक गए वो, अभी रंग गए पूरे, जैसे होली में किसी को पहचानने को आते हैं कि हम लोग, अरे सर आप क्या हो गया आपको आज? कल हमारी कुछ ऐसी अवस्था थी, हाँ ये मिले थे हमको, ये सूरज चाचा के मजाक कर रहे थे, पीछे से मैं आया, मतलब कई बोल कैसे हो? अरे वो हम बोरे पूरे आनंद लिया कल। तो वैसे ठाकुर जी पूरे स्वर्णमय हो गए, फिर भी पूछ रहे हैं पीली वस्तु क्या है, और ये लीला है, इसके आगे लीला नहीं है कुछ। आपको उत्तर देना है ठाकुर जी के प्रश्न का कि पीली वस्तु क्या है बताओ। बताओ पूरन जी महाराज बताओ, ठाकुर जी पुकार रहे हैं, गूंज गूंज कर पुकार रहे हैं, ये पीली वस्तु क्या है बताओ।
वही भाव है राधा रानी,
राधा रानी का भाव है, राधा रानी का रंग है। और हम लोग उस कलर की बात नहीं कर रहे हैं, तो कलर तो बदली होता है, हम उसकी बात कर रहे हो। पीला रंग उनका कपड़े का नहीं हुआ है, भाव से हुआ है, मतलब राधा मय हो गए हो, और जो रंग चढ़ा है वो राधा रानी का भाव है भक्ति का, वो उन पे चढ़ा और उनको इतना आनंद आया, इतना आनंद आया उस अवस्था में कि भाव विभोर हो गए, वो पुकारते ही रह गए। मतलब उन्होंने उस समय एक तरह से ये ऐलान कर दिया कि इस भाव में थोड़ा बहुत समय रहने पर मुझे इतना आनंद आ रहा है, मैं भी एक पूरा अवतार लूँगा, एक पूरा अवतार लूँगा इसमें, इस भाव को समझने के लिए। तो गौरांग महाप्रभु और कोई नहीं है, वो आपकी राधा रानी है, ये मत समझना अरे ये लोग गौड़ीय संप्रदाय के, तो अलग संप्रदाय है, हम तो राधा रानी के। अरे गौड़ीय संप्रदाय राधा रानी के एक ही है, क्योंकि वही है तुम्हारी राधा रानी। वो ठाकुर जी इतने मोहित हो गए, इतने प्रेम से मोहित हो गए कि ऐसा क्या वो चीज़ है जो तुम्हारे पास है, जिसका अनुभव मुझे नहीं कर सकता हूँ मैं, कुछ समय के लिए कर रहा हूँ तो पागल हो जाता हूँ मैं, हो रहा हूँ दो दिन से, मतलब दो एक घंटा से, दो मिनट से पानी में डूबा तो मुझे इतना आनंद आया, और तुम तो उसी भाव में रहते हो हमेशा, तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम्हें इस भाव की वजह से जो आनंद प्राप्त हो रहा है मेरी सेवा में, वो मुझे भी पता नहीं है ना। एक होता है स्वामी, एक होता है नौकर, नौकर स्वामी की सेवा करता है, बहुत आनंद पाता है स्वामी की सेवा में बहुत, मतलब मैं वो जॉब वाले नौकर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जो सही भाई स्वामी और दास की बात कर रहा हूँ। तो उस दास को स्वामी की सेवा करके कितना आनंद आता है, वो स्वामी सेवा लेकर भी उसको अनुभव नहीं कर सकते जो दास को स्वामी की सेवा करके आता है। तो वो ये देख रहे हैं कि मुझ पर प्रेम करके इनको इतनी खुशी हो रही है, इतनी मेरी सेवा पाकर मुझे भी नहीं हो रही मुझे हो रही है लेकिन अलग टाइप की हो रही है, इनको लेकिन ज़्यादा हो रही है कुछ, और मैं सर्व सब कुछ जानने वाला हूँ, सर्व ज्ञाता हूँ, फिर भी इस बात को नहीं समझता मैं, ये क्या चीज़ है। तो ये पीली पोखर पर उन्होंने ये एक तरह से सबको बता दिया है कि मैं आने वाला हूँ, एक पूरा अवतार खर्च करूँगा, एक पूरा अवतार बोलते ना, एक पूरी ट्रिप मैं खर्च करूँगा इस बात पर, अमेरिका जाऊँगा तो एक इस एक ट्रिप इस बात के लिए बस, मेरे बेटी के लिए पति ढूंढने के लिए, ऐसा हो सकता है वैसा एक पूरा अवतार, कोई साधारण बात नहीं है। हम लोग तो यहाँ वहाँ घूमते हैं दुनिया में, तो एक आध ट्रिप जो है एक काम के लिए छोड़ सकते हैं, एक ये ट्रिप वृंदावन में आऊँगा तो खाली घर ढूंढूंगा, मेरे लिए मेरे को घर बनाना है बस, एक सात दिन की ट्रिप केवल घर बनाने के लिए, ऐसे हम लोग 50 ट्रिप मार सकते हैं 50 काम के लिए। लेकिन एक अवतार लेना कोई साधारण बात नहीं है, अवतार लिमिटेड होता है, विष्णु के 10 अवतार होते हैं और शास्त्र में लिखे होते हैं, व्यासदेव ने लिखा होता है तभी उसके अनुसार आते हैं। ऐसे ही चलो भाई घूमने एक अवतार ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। जब पृथ्वी पर बीच में 7वीं-8वीं सदी में जब भी बहुत सारा धार्मिक आतंक फैल गया था, लोग धर्म वर्म भूल के सब लोग गुड़िया गुड्डी का विवाह करते थे, सब बहुत सारा ऐसा काम करते थे, ब्राह्मण लोग ऐसे टाइम पास करते थे, कुछ ना कुछ ऐसे कुत्ता कुत्ती का बिल्ला बिल्ली का शादियाँ करते थे और खाना खिलाते लोगों को, ऐसा जिनको नारायण का नाम लेना चाहिए विष्णु का नाम लेना चाहिए वो ऐसे टाइम पास करते थे। तो देवता लोग पहुँचे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी पहुँचे विष्णु के पास, बोल रहे हैं महाराज कुछ करो, पृथ्वी पर तो धर्म का थोड़ा नाश हो रहा है। तो भगवान विष्णु स्वयं बोलते हैं उनको, अरे मेरा अवतार का समय नहीं है, मैं भी जा सकता नहीं, मेरे अवतार का कोई अभी शेड्यूल नहीं है, टाइम टेबल नहीं बनाया ऐसा, तो करें क्या, समस्या तो है भगवान क्या करें। तो भगवान शांत हो गए और जैसे मैं आपको देख रहा हूँ ऐसे मैं ऐसे भगवान सबको देखने लगे, और वायुदेव के ऊपर ऐसे नन्हे राम नज़र स्थिर हो गई उनकी, वायुदेव को बहुत देर से देखा उन्हें प्रेम से, और अपनी सारी जो नज़र से दृष्टि से सारी कृपा वायुदेव में इन्वेस्ट कर ली उन्होंने, हाँ डाल दी उनके अंदर, भर दी, बैटरी को चार्ज कर दिया उनके, और बाद में बड़े प्रेम से सब लोग देख रहे हैं कि ठाकुर जी सबको देख रहे हैं, और बहुत सबको देखने के बाद में एक पर नज़र स्थिर हो गई, उसको भी देख रहे हैं, कह रहे इस पर नज़र स्थिर हो गई, नज़र से भगवान कृपा कर रहे हैं, नज़र से कृपा से भर रहे हैं उसको, वो भी उसका आनंद ले रहे हैं, वो भी अजीब शक्ति का अनुभव कर रहे हैं कि मेरे में कुछ अलग शक्ति आ रही है। ठाकुर जी बोलते हैं जाओ वायुदेव अवतार ले लो, और ये जो लोग हैं जो भगवान को निराकार मानते हैं उसको हरा दो सबको, और मैं व्यक्ति हूँ पुरुष, हाँ पुरुषावतार ये स्थापित करो, जाओ सब मायावादियों को भगा दो। तो कौन बने वो? मध्वाचार्य, मध्वाचार्य बनकर आए। बड़े अद्भुत तरीके से आए वो, बहुत अद्भुत तरीके से, करीब 80 साल जिए वो, और सारे मायावाद का खंडन किया उन्होंने। बड़ी लंबी कहानी है, और हमारा गांव है वो जहाँ पर उनका अवतार हुआ है, उडुपी, उडुपी के पास एक गांव है पाजका, वहाँ पर उन्होंने जन्म लिया। बड़े अद्भुत तरीके से, चलो उनकी बात निकल रही तो एक कथा बता देता हूँ उनके आपको। तो वो ना मकर संक्रांति का दिन था, उस समय बड़ा जलसा था हमारे गांव में, अनंतेश्वर का मंदिर है, परशुराम जी महाराज वहाँ विराजमान है, तो परशुराम जी महाराज के मंदिर में उत्सव चल रहा था। तो एक पागल आदमी था उसमें हमेशा रहता था, तो अचानक वो पागल आदमी था ना वो खंभे पे चढ़ गया, कौन से? गरुड़ स्तंभ पे चढ़ गया। तो आवाज़ बंद कर, बहुत जोर से आ रहा है आवाज़। तो ऊपर जाके उसने ऐसा हरकतें किया सब लोग की, ऐसे जोकर जैसी, सबका ध्यान उसके पास गया, अचानक गंभीर हो गया वो और बोला वायुदेव का पुत्र अभी अवतार लेने वाला है और सब मायावादों का खंडन करके भगवान के व्यक्तित्व को स्थापन करने वाला है। ऐसा करके जब उतर गया तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया वो, किसी को पागल लड़का आदमी वापस दिखा नहीं। बहुत गंभीर भविष्यवाणी की उसने, और यथावकाश मध्य गेह भट्ट और उसकी पत्नी के गर्भ में वायुपुत्र ने जन्म लिया। वो भीमसेन के छोटे भाई थे, हनुमान के छोटे भाई थे वो, और उन्होंने 80 साल तक हमारे गांव में लीला किया। बहुत बलवान थे, एक बार 100 आतंकवादियों को एक हाथ से मारा उन्होंने, और भीम जैसे खाने में भी बहुत होशियार थे एकदम, हनुमान जैसे। 10 इंच कितना होता है बताओ, 10 इंच बताओ, 10 इंच कितना होता है? 10 इंच कितना होता है? इतना चौड़ा केला तो बड़ा कितना होगा वो? अगर 10 इंच चौड़ा है तो बड़ा भी उतना होगा ना, थोड़ी ऐसा होगा, ऐसा केला नहीं है वो, ऐसा ही केला है लेकिन है इतना चौड़ा। ऐसे 300 केले खा जाते हो एक बार। जब उनका अन्न प्राशन का समय आया ना, मालूम है ना आपको, 6 महीना के बाद भी लोगों को अन्न खिलाते लोग, हम लोग खीर का प्रसाद भगवान को लगाते हैं और वो खीर का प्रसाद बच्चे को साधु के हाथ से खिलाते हैं, अन्न प्राशन बोलते हैं। तो अन्न प्राशन 3 महीने हो गए उनके, इतको रो रहा है बच्चा, तो माँ कहीं चली गई थी, सिस्टर को बोला था कि देखो मेरा बालक को, देखो मैं जरा आ रही हूँ। सुन रहे हो जीतू? हाँ सुनो, बालक को भूख लग रही है, 3 महीने हो गए उसके अभी। तो बहन परेशान हो गई क्योंकि बच्चा रोने लगा, तो कैसे, वो तो बच्ची है ना, वो क्या उसको ट्रेनिंग है, तो दौड़ रही आगे पीछे, मैया आई कि नहीं, मैया आई कि नहीं। बहुत जोर से रोने लगा, तो भी क्या करे, छोड़ के भाग गई मैया को ढूंढने के लिए। तो ये रेंगता हुआ गौशाला में गया बालक, गौशाला में ऐसे पता है ना, एक जगह पे चारा होता है, एक जगह पे वो मशीन से काटते ना आप लोग वो रहता है, एक जगह पे धान में रहता है, उसको भी बाद में लोग पीसते हैं और खिलाते हैं गाय को। तो एक जगह पे बोरियाँ थी धान्य की, 40 किलो की एक एक बोरी, ऐसी बोरियाँ थी। तो ये लड़का बोरी में घुस गया और 40 किलो धान्य खा लिया उसने एक बोरी का। जब वापस लौट के आए मैयाओं को लेके, ढूंढ रही है बालक को, किधर गया वासुदेव, कहाँ गया वासुदेव, कहाँ गया, उसका नाम वासुदेव था, बचपन का नाम वासुदेव था, तो कहीं भी नहीं मिला। तो बाद में गौशाला में गए तो गौशाला के गोनी के अंदर मिला और गोनी खाली, भरी हुई गोनी खाली। इस प्रकार से अद्भुत उसका अन्न प्राशन हुआ। ऐसे कई अद्भुत कहानियां उनकी। भीमसेन के अपने जीवन काल में उसने एक मणिमान नाम के राक्षस को मारा था, तो राक्षस दोबारा जन्म लेके आया सांप बन के, मणिमान सांप बन के आया वो। तो इनकी अभी भी उपनयन विधि हुआ था, ब्राह्मण दीक्षा गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ था इनको। तो उसके बाद वो स्कूल जाते थे, क्योंकि ब्राह्मण दीक्षा पाने के बाद गुरुकुल जाते ना, तो गुरुकुल जाने लगे वो। तो गुरुकुल जाने में जब आ रहे थे तो रास्ता में इसने अटैक किया उनके ऊपर, तो पाँव के एक अंगूठे से कुचल दिया उसको, अपने बड़े राक्षस को। वो देर हो गई तो मैया बोल रहे, अरे वासुदेव कहाँ पर हो, कहाँ पर हो, आज आए क्यों नहीं? तो वासुदेव वासुदेव पुकार रहे हैं, तो इनको वहाँ पुकार सुनाई पड़ती है जहाँ पर राक्षस को मारते हैं। सीधे वहाँ से जंप मारते घर पे, आज भी घर पे वो जगह है जहाँ पर उन्होंने जंप मारा हुआ है, उनके पैरों के पत्थर पर निशान है, ऐसे अद्भुत थे वो मध्वाचार्य। बहुत लंबी लीला है उनकी, लेकिन जो आपके ब्रज में आपको पता होगा कि नहीं मालूम नहीं मुझे, लेकिन द्वारका में ये जो रानियां थी ना भगवान की, वो ना बहुत व्याकुल रहा करती थी, उनको भगवान के बाल्यकाल की लीला सुनने में बहुत इंटरेस्ट था। सब लोग शादी हो गए तो सब भगवान जवान हो गए थे ना, लेकिन बाल्यकाल की लीलाएं उनके बचपन में उन्होंने सुनी थी। समझो अभी आप हो वहाँ पर, कोई भी सब लोग हो, आपकी शादी होती है तो हो सकता है कि आपकी पत्नी की बचपन की कहानी आपको पता होगा शायद, अरे बाद में उसके शादी हो गई आपकी, लेकिन आपको पता होगा ये गांव में जब थी तो ऐसे ऐसे करती थी, उनको पता हो गया कि आप भी बचपन में ऐसे ऐसे करते थे। वैसे उनको पता चल गया था कि कोई कन्हैया नाम का बालक है वो गिरिराज को उठा रहा है, हाँ अगासुर को मारा है, उसने गौचारण किया है, उसने रासलीला किया है, बहुत सारा सुनाई पड़ता था। यथावकाश वो बड़ी हो गई, ये भी बड़े हो गए, द्वारका पहुंचे तो शादी हो गई सबकी, लेकिन सबको इंटरेस्ट था उनके बाल्यकाल के बारे में सुनने के लिए सबको। लेकिन एक ही ऐसी व्यक्ति थी जिन्होंने भगवान के बाल्यकाल का दर्शन किया था, जो द्वारका में भी थी, वो कौन थी? अरे आपका ही ब्रज है, आपकी ही कथा है, आपका ही प्रश्न आपको ही पूछ रहा हूं। ऐसी कौन व्यक्ति थे जो यहां पर भी थी और द्वारका में भी थी? रोहिणी देवी थी कि नहीं? वसुदेव के द्वारा गर्भवती थी तो उन्होंने छोड़ दिया उसको यहाँ पर सुरक्षा के लिए, फिर जन्म हुआ तो यहीं पर है वो, है ना? तो रोहिणी भी यही रही, जब तक कृष्ण ने कंस को नहीं मारा तब तक रोहिणी यही रही। जब कृष्ण ने कंस को मारा, राज बना दिया उग्रसेन को, तो ये चली गई अपने पति के पास। फिर उन्होंने मथुरा में कुछ निवास किया, फिर मथुरा में जब ही कंस को मारा तो कंस की दो जो पत्नियां थी अस्थि प्राप्ति, वो जरासंध की लड़कियां थी। जरासंध उनका ससुर था ना, तो ससुर को दुख तो होगा ना कि अरे अपनी दो जो लड़कियां अच्छी बेवा हो गई। रोते रोते गई वो, ऐसा वर्णन आता है कि बहुत जोर से रोती गई वो, जानबूझ के पति पिता को ऐसा भड़काने के लिए कृष्ण के खिलाफ। तो पिता को देखा नहीं गया, अरे दो लड़कियां विधवा हो गई घर पे आ गई, तो बड़ा दुख हो गया उसको, किसने किया है? कंस ने, कृष्ण ने किया आक्रमण मथुरा में आक्रमण, अरे 16 बार आक्रमण किया उसने। अभी कैसे मन में क्या, मथुरा में कोई युद्ध की भूमि नहीं थी, मथुरा शहर था, राज्य था, युद्ध भूमि कहीं बाहर होती। ये रोज हर बार जब हमला करता था ना तो मथुरा के रस्तों में और महलों के बीच में हमला होता था, मतलब आपके बिल्डिंग के नीचे युद्ध हो रहा है, ये हॉस्पिटल खड़ा है, आश्रम है, बाजू बाहर गोलाबारी हो रही है, बम फूट रहे हैं, भविष्यवाण चल रहे हैं, घोड़े और हाथी चिल्ला रहे हैं। ऐसे अगर आपके घर में होने लगेगा तो आपको कैसा होगा? आपको घर में बैठ के आप आराम से कथा कर सकते हो क्या, भागवत की 7 दिन वाली? नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर इतना आतंक चल रहा है, चिल्लम चिल्ला हो रहा है, आक्रोश हो रहा है, किसकी मृत्यु हो रही है, आक्रमण गर्जना शंखनाद हो रहा है, तो आप यहाँ पर ऊपर नीचे होंगे ना, ऐसे कथा बंद करेंगे और सुनेंगे क्या चल रहा है, झरोखे से देखेंगे क्या हो रहा है। ऐसे उनका था, महलों के बाहर ही युद्ध हुआ करता था। तो आए दिन अगर शहर में रहने की जगह पर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर अगर युद्ध होने लगा तो अशांति फैलेगी कि नहीं? आ जाओ बैठ जाओ। तो भगवान को लगा कि अरे मेरे मथुरावासी बहुत परेशान है, अभी आए दिन यहाँ पर जरासंध जा के लोगों को इकट्ठा करता है, हमला करता है। तो फिर द्वारका शिफ्ट हो गए वो, सबको पता है ना, द्वारका में समुद्र को पीछे हटाकर समुद्र वाली जगह पर नगरी बसाई, क्या नाम था उसका, विश्वकर्मा के द्वारा। इतनी अद्भुत नगरी आज तक किसने बताई नहीं, समुद्र के अंदर बोलो, और ऐसे सैकड़ों महल थे उसके अंदर, अपने रानियों के लिए 16,108 तो विशेष महल बनाए उन्होंने। लेकिन बाकी लोगों के ना अक्रूर है, उधर उद्धव है, रे कितने अधिकारी हैं बांके बिहारी जी, बहुत अधिकारी द्वारका में, और सब लोग के लिए महल बने हुए हैं, ऐसे सैकड़ों अरोड़ों महल भगवान ने बनवाए, इतनी दिव्य नगरी भगवान की, और सब लोग रानियां आ गई, रोहिणी जी भी वहां पर आ गई, वसुदेव जी भी वहां पर आ गए। तो रोहिणी को ये सारी पत्नियां भगवान की बार बार पूछा करती थी, माता बताओ ना आपको कहानी, बताओ ना हमारे पति के बचपन की कहानी बताओ। तो माता उनको बोलती थी, देखो बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही कृष्ण बलराम अपने बचपन की ब्रज की कहानी सुनेंगे, तुरंत ब्रज को जाएंगे, रथ अपने सारथी को बुलाएंगे, हे दारुक जल्दी आ जा, रथ तैयार कर जा, मुझे चलना है अभी, है ना। अरे बचपन की याद तो हमको भी आती, तो हमको गाँव जाने का दिल करता है तुरंत, वो तो ठाकुर जी का ब्रज लीला है, सबसे प्रिय स्थान है उनका बचपन का, 10-11 साल 52 दिन रहे यहाँ पर, वो इतने अद्भुत लीला है कि उन्होंने तो बोले, देखो कथा बोलते ही वो प्रकट हो जाएंगे, जहाँ पर ब्रज कथा होती है वहाँ पर वो प्रकट हो जाते हैं, नंबर वन, और नंबर टू, प्रकट होते ही ब्रज की कथा सुनेंगे, बचपन की याद आएगी माखन की, तो भागेंगे, और एक बार भागेंगे वहाँ पहुँचेंगे लौट के नहीं आएंगे। क्या चाहते हो? नहीं 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 हमको पति चाहिए द्वारका में भाई, हमको रिस्क लेना नहीं है। लेकिन उसके बाद में भी बार बार इच्छा उत्पन्न हो रही है, और बार बार चर्चा हो रही है, बार बार नहीं चाहिए ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन एक बार बोलते हैं कुछ इसमें भी कुछ उपाय होना चाहिए, हाँ इसमें भी कुछ नुकसान निकालेंगे, जिससे वो कथा भी सुनेंगे और वो जाने भी नहीं देंगे उनको, क्या करें फिर। तो कहते हैं कि एक काम करते हैं, एक महल में इसका रखते हैं वेन्यू, हाँ स्थल एक जगह रखते हैं, सारे दरवाजे लॉक कर देते हैं उसके, एक दरवाज़ा खुला रखते हैं, उस पर सुभद्रा को रखते हैं दरवाजे के बाहर, मतलब जैसे ही ब्रज कथा शुरू हो जाएगी, दूर कहीं भगवान दिखाई पड़ेंगे आते आते, तो तुम आ रहे हैं कथा बंद, सब कथा का सब भाग जाएंगे अपने अपने घर, ऐसे कुछ हुआ ही नहीं, कोई योजना नहीं यहाँ पर, कोई आयोजन नहीं यहाँ पर, कुछ कथा वाता कुछ है नहीं, ऐसे कर देंगे। हाँ ये बढ़िया आइडिया है। अच्छा और एक उसमें माता थी जो पत्नियों से भी अधिक उत्सुक थी, जो मथुरा में थी लेकिन वृंदावन में नहीं थी, कौन थी वो बताओ चंद्रप्रकाश, वो कौन थी जो मथुरा में थी ब्रज में नहीं थी लेकिन द्वारका में थी? हाँ देवकी माता, आप लोगों को बताना चाहिए। अरे जन्म दिया उसने, एक बार दूध पिलाया और भेज दिया उसको, कभी दर्शन किया क्या उसके बाद में? एकदम बड़ा होकर ही आया सीधा चल नमस्कार करने के लिए, मैया क्या करूँ, तो बोले रह जा अभी तो मेरे पास, है ना। इस बात पर नंदगांव के लोग आज भी रोते हैं, क्योंकि उनके दुख का मूल कारण तो वही था, क्योंकि जाके मैया के पैर छिए और बोले क्या सेवा करूं, तो मैया ने कहा भी यहीं रह जाओ, हाँ मैया जो आप बोलोगे वैसा करोगे। नंद बाबा मिलने गए, चलो भैया, नहीं नहीं मैया ने कहा है रहो तो मैं रहूँगा, तो बोले वो मैया को कहा जवाब दूंगा, वो तुम देख लेना, जो भी जवाब देना है दे देना। ये बड़ी दुख का रहस्य है उनका, ये इसकी वजह से वो दुखी हो गए नंदगांववासी, दो बात से दुखी हो गए, एक उद्धव आए तभी हुए, और एक ये बात हुई, एक बार अक्रूर आए और ले गए तब दुखी हो गए। उससे भी दुख तब हुआ जब ही इन्होंने अपनी माता को वादा किया कि मैं अभी आपकी इच्छा पूरी करूँगा। तो देवकी माता भी व्याकुल थी, उसका खुद का बच्चा होने पर भी उसके बच्चे की बाल लीला उसको नज़र नहीं आई थी, तो वो भी सभा में बैठी हुई है, और सभा में ऐसी कथा होती है, ऐसी कथा होती है कि हम कभी उसका वर्णन नहीं कर सकते कि कैसी कथा हुई वो, क्योंकि करने वाले रोहिणी जी हैं, सुनने वाले पत्नियां और देवकी जी हैं, भाव विभोर होकर सुनती है वो, ऐसी पराकाष्ठा होती है हाँ भावनाओं की, ऊपर नीचे हो रहा है, भगवान गिरिराज उठा रहे हैं, भगवान ने इसको मारा, भगवान रेंग रहे हैं, भगवान मक्खन चोरी कर रहे हैं, भगवान इसके घर पे जाके मटका तोड़ रहे हैं, इसके सांकरी कोर में रोक रहे हैं, सारी कथाएं बता रही, तो भावना उनकी ऊपर नीचे हो रही है। और वहाँ तो दरवाजे पे बेहोश हो गई सुभद्रा सुनकर, क्योंकि वो कान लगा रही है, उसको भी इंटरेस्ट है कि अंदर क्या चल रहा है। समझ रहे हो आप, बड़ी अद्भुत कहानी आपने मांगी थी ना, ये अद्भुत कहानी है भगवान की, ये द्वारका में हो रही है, लेकिन ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन द्वारका में हो रहा है, सब लोग व्याकुल मतलब प्रेम विवल होकर सुन रहे हैं उसको। और जब ये कथा एकदम चरम सीमा में पहुंचती है ना भाव के, तो झट से उसमें कृष्ण बलराम प्रकट हो जाते हैं, बाल अवस्था वाले नंगे, पूरा अलंकार धारण किए हुए, और हाथ में मथनी, और एक हाथ में मक्खन और डोरी मथनी वाली, ऐसे खड़े दोनों भैया, और उसको देखकर देवकी के स्तनों से नदियां निकली दूध की। उसका वात्सल्य इतना पराकाष्ठा में पहुंच गया कि देवकी के थनों से नदियां बही और वो बेहोश हो गई भाव विभोर होकर। इतना प्रेम जगा उस बालक को देखकर कि अभी उसको दूध पिलाऊं। सो रानियां भी भाव विभोर हो गई। फिर लीला ही समाप्त हो गई। तो जो दर्शन किया था रुक्मिणी देवी ने और सबने, उनके मन में ठाकुर जी पति होने पर भी ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव जागृत हो गया उनके मन में। ठाकुर जी अपनी जगह पर है, उनके प्रति पति भाव है, लेकिन जो दर्शन किया ठाकुर जी का बचपन का देखकर, उनके मन में वात्सल्य माँ का भाव जागृत हो गया। तो उसने बज्रनाभ को बुलाया। अब बताओ बज्रनाभ कौन है? हाँ बज्रनाभ कौन है? अरे यही पास में समाधि है उसकी, बहुत देर ज्यादा दूर नहीं है, करेला गांव में समाधि है बज्रनाभ की। कृष्ण का पुत्र जो है उसका नाम क्या है? प्रद्युम्ना। रुक्मिणी का पुत्र है वो। प्रद्युम्ना का विवाह होने का उसको पुत्र हुआ, उसका नाम क्या है? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह हुआ, उसके पुत्र का नाम क्या है? बज्रनाभ। मतलब क्या हो गया कृष्ण का? वो प्रपोत्र हो गया, वो ग्रेट ग्रैंडसन। तो वो उसको राजा परीक्षित ने ब्रज का राजा बना दिया। ये तुम्हारा काम है, मैं जाने के बाद में मैं जहाँ जहाँ लीला लीला किया ब्रज में, उसको आपको स्थापन करना है, आपको बनाना है, उसको संभाल कर रखना है ऐतिहासिक रूप में, लोग उसको आके याद करेंगे मेरी लीला को। तो वो उसका काम है। तो उसको बुलाती है, बोलते तुम मूर्ति बनाओ, वर्णन करती है उसको। अभी दर्शन तो नहीं हो रहा है उस मूर्ति का, वो तो देख के मन में है फिट। तो उसके बारे में वो उसको आदेश देती है, वर्णन करती है, प्रेरणा देती है। तो वो कृष्ण और बलराम दोनों की मूर्ति बनाते हैं वैसे ही। और आपको क्या बताऊं, रुक्मिणी माता ने अपने जीवन भर उसके बाद में वो दोनों भैया की मूर्ति की सेवा किया है अपने विग्रह के रूप में। वही आदमी घर पे पति के रूप में है, लेकिन विग्रह के रूप में मंदिर में कौन है? दोनों भैया बाल स्वरूप में। तो ये मूर्तियां जो है ठाकुर जी की, ये मूर्तियां कालांतर में जब भगवान अंतर्धान हो गए और सागर द्वारका के ऊपर चला गया, जो जल को पीछे हटाकर भगवान ने द्वारका नगरी बसाई थी, ठाकुर जी के लिए बनाई थी, ठाकुर जी की लीला के लिए बनाई थी। उसके बाद में तो ठाकुर जी ने सब अंतर्धान कर दिया ना पूरा, रानियों को लेकर यहाँ पर कुसुम सरोवर को भेजकर उनको भगवान के धाम में, अपने धाम में पहुँचा दिया। यादव वंश को उधर प्रवास क्षेत्र में उन्होंने युद्ध करवा के, झगड़ा करवा के, यादवी मतलब भाई बंदकी में झगड़ा करवा के उनको ऊपर करवा दिया, सबको ले गए। यहाँ पर आए दंतवक्र को मारने के लिए, तो ब्रजवासियों को लेकर भी सब अंतर्धान करवाया। तो द्वारका भूमि जैसे ही भगवान के पार्षद लोग चले गए, तो द्वारका भूमि को जल ने वापस घेर लिया जैसे पहला था। इसलिए आज भी पुरातत्व विभाग को द्वारका के गुजरात के समुद्र के अंदर अवशेष मिलते हैं, पुराने संस्कृति के और महलों के भव्य दिव्य खंभे मिलते हैं, स्तंभ मिलते हैं। तो यथावकाश जब ये सब लोग चले गए, ठाकुर जी के जो विग्रह थे ना, तो उन दो कृष्ण बलदाओं के, वो चंदन में लिपट लिपट गए ठाकुर जी की इच्छा के अनुसार, और समुद्र के तल पर पड़े रहे। फिर द्वापर समाप्त हो गया, फिर कलियुग शुरू हो गया, 800 साल बीत गए। तो ये किनारे पे आ गए ठाकुर जी की इच्छा से। तो एक व्यापारी था जो, अभी ये 700-800 साल पहले की बात है, अभी 800 के साल की बात करो, मतलब ये 8 चल रहा है, 1600 ना अपना 2016 चल रहा है ना, तो कितने हो गए, 1200 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, या तो 800 साल पहले की बात करता होगा, लेकिन कलयुग के बीच की, आज के जितने समय हो गए उसके बीच की बात कर रहा हूँ एक दृष्टि से। तो एक व्यापारी निकलता है द्वारका से दक्षिण भारत में व्यवसाय करने के लिए। तो जब वो उडुपी आता है, उडुपी कहाँ है पता है? बम्बई मालूम है? बम्बई, बम्बई के नीचे अगर समुद्र किनारे पे नीचे जाओगे दक्षिण किनारे पे, तो गोवा आता है। गोवा, गोवा के आगे जाओगे 4-5 घंटा तो उडुपी आता है, उसके बाद केरला आता है, केरल त्रिवेंद्रम, उसके बाद कन्याकुमारी, भारत का एंड। तो ये उडुपी हमारा गांव है जहाँ पर ये समुद्र किनारे पे खड़े हैं। और जहाज आता है और समुद्र में तूफान आता है, तो जहाज जो है ना उसे गोल गोल घूमता है समुद्र के अंदर। तो मालिक जो है वो कूद के आता है, मतलब उधर ही चिल्ला रहा है समुद्र में। तो मध्वाचार्य जो है ना हमारे, पहले कौन थे? वासुदेव, फिर आ गए ना आप, हनुमान जी के छोटे भाई वायुदेव का अवतार हुआ है ना, तो वो भी जवान हो गए हैं, संन्यास ले चुके हैं मध्वाचार्य के रूप में। तो किनारे पे अपने शिष्यों को लेकर आ रहे हैं, वो चल रहे हैं, गीत गाते हुए, गीत रचते हुए आ रहे हैं। हाँ चंद्रप्रकाश जी, क्या कर रहे हैं वो? मैंने कहा ना, दीवाल का सहारा लिया तो गया, किसी और लोक में चला गया, इसलिए मैं भी सहारा नहीं लिया है इसका, आगे ही बैठा हूँ। वह सहारे से कनेक्शन है उधर का, टिकट मिलता है निद्रा लोक का। तो क्या कह रहा था मैं, तो जहाज जो है वो भटक रहा है, तो वो चिल्ला रहा है, तो ये वायु के अवतार थे ना, उन्होंने क्या किया, अपना ऊपर का वस्त्र निकाला और इसे घुमाया, तो वायु की दिशा बदली कर दिया उसने, और वो दिशा को बदली करके वो जहाज को ऐसे खींच के लेके आया, मानो अपने वायु बल से किनारे पे लगाया उसको। इतने शक्तिशाली थे वो वायुदेव के अवतार थे। तो जैसे ही लगा किनारे पे, तो आप मालिक भाग के आया, भाग के उतर के आया, बोला महाराज जी बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमको बचाया, ले लो जो जहाज में जो भी सामान है आपका है, क्योंकि वैसे भी वो डूबने वाला था, मेरा था ही नहीं वो, आज मेरा हो गया, आप ले लो। बोलता मैं तो सन्यासी हूँ, मैं क्या करूँगा इसको लेके, तो कुछ तो लो। तो ये बात बताना मैं आपको भूल गया था कि जब वो वहाँ से निकला था द्वारका से, तो अपने अपने जल के जहाज को बैलेंस करने के लिए ये दो जो बड़े बड़े चंदन के गोला थे ना, उसको उठा के दो तरफ रखा था उसने जहाज को बैलेंस करने के लिए। साधारण नहीं थे वो, बहुत बड़े थे वो, बहुत बड़े विशाल, उसको दो जगह पे रखा था उसने। उन्होंने कहा वो चंदन के जो ठेले हैं ना आपके, वो दे देना मुझे आप, वो मेरे काम आएंगे। तो उन्होंने कहा ले लो। तो उन्होंने बोला अपने 35 शिष्यों को बोला जाओ ले आओ उसको। तो 35 शिष्यों को भी वो उठाने गया, बहुत कोशिश किया, फिर ये गए अकेले, एक हाथ से ऐसा ही उठाया, एक दूसरा हाथ से उठाया, और टक 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 आने लगे तुरंत। और वो जब ही समुद्र किनारे चल रहे थे, एक अपने हाथ से निकल गया उनके, पीछे गिर गया, दो टुकड़े हो गए, और बलराम जी बलदाऊ जी का विग्रह प्रकट हो गया उसमें से। बलदाऊ जी प्रकट होते ही बोले मुझे समुद्र किनारे स्थापन करो और कहीं मत लेके जाओ। तो उनको वही स्थापन कराया उन्होंने। वो आज भी उड़पी के किनारे पे बलदाऊ जी का विग्रह है, का नाम वडबांडेश्वर है। फिर दूसरे को लेके गए अंदर गांव में, उड़पी गांव में उनका सरोवर था उनके नाम का, मध्वा सरोवर नाम का। गंगा जी प्रकट होती वहाँ पर साल में एक दिन, बड़ी लीला है उनकी बहुत सुंदर। उसमें उन्होंने चंदन को पिघलाया और ठाकुर जी के विग्रह को प्रकट किया, श्री कृष्ण भगवान के। नन्हे से श्री कृष्ण है, हाथ में मथनी है, डोरी है, और एक हाथ में मक्खन है, छोटे से बालक, बहुत सुंदर। उनको वहाँ स्थापन किया और उनकी सेवा आज भी चल रही है। तो ये सब मैंने क्यों बताया था, ये कहानी की शुरुआत ऐसे हुई कि भगवान ने एक पूरा अवतार खर्च किया, जिनका अवतार बहुत लिमिटेड होता है, उसकी प्लानिंग होती है, उसको शास्त्र में लिखना पड़ता है, तो उनका अवतार का टाइम नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने वायुदेव को अवतार लेने को भेजा। यहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई थी। तो मैं ये आपको बताना चाहता था कि ऐसा कड़क शेड्यूल होने पर भी भगवान ने एक ऐसा अवतार लिया जो शेड्यूल में नहीं था, जो है गौरांग महाप्रभु का अवतार। दस अवतार भी नहीं है उसके अंदर, क्योंकि दसवां तो अवतार है, तो अभी बाकी टाइम है उसको होने के लिए। बुद्ध का अवतार भी हो गया है, कल्कि अवतार बाकी है अभी, ये अवतार का शेड्यूल नहीं है। लेकिन फिर भी 8 या 10 जगह ऐसे शास्त्रों में है जहाँ पर इस छुपे हुए अवतार का वर्णन किया गया है, कि ये अवतार कहीं प्रकट रूप से कहीं पर लिखा नहीं गया उसको, लेकिन क्या बोलते हैं उसको, अप्रत्यक्ष रूप से वर्णन किया गया उसका, तो वो है गौरांग महाप्रभु का। क्योंकि भगवान ने सारे अवतार भगवान के रूप में लिए थे, लेकिन ये अवतार भगवान ने अपने भक्त के रूप में लिया, वो भक्त बने स्वयं। क्योंकि अगर भक्त को क्या खुशी मिलती है उसका अनुभव करना है, तो भक्ति बनना पड़ेगा ना, स्वामी बन के कैसे मिलेगा अवतार आनंद उसका। तो भक्त बनने का आनंद अनुभव करने के लिए स्वयं भक्त बने, इसलिए कहीं पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि मैं विष्णु हूँ। लोग कहते थे आप विष्णु हो, स्वयं विष्णु हो, बोले विष्णु 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 विष्णु, ऐसे कान हमें हाथ रखकर एक भक्त कैसे बोलेगा, समझे आपको बोलूंगा मैं जीतू आप विष्णु हो, तो आप बोलेगे नहीं सर विष्णु शिव 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 शिव, ऐसा बोलेंगे, ऐसे लोग बोलते ना शिव 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 शिव, ऐसे बोलते हैं लोग, जब उनको जरूरत से अधिक सम्मान मिलता है तो वो बिल्कुल नहीं 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 मैं नहीं हूँ ऐसे बोलते हैं। वैसे भगवान बोलते थे और कुछ गिनी चुनी जगह पर उन्होंने अपना सही स्वरूप प्रकट किया। बहुत सुंदर लीला है उनकी, और उनका जो लीला है वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा हुआ है, उसका नाम है चैतन्य चरितामृत, बांग्ला में लिखा है वो। फिर और एक आचार्य हुए वृंदावन दास ठाकुर, जो व्यासदेव के अवतार थे, उन्होंने लिखा, क्या लिखा, चैतन्य भागवत। फिर और एक हुए लोचनदास ठाकुर, उन्होंने चैतन्य मंगल, खास करके बाल लीलाओं के बारे में वर्णन किया उनका। और एक आए मुरारी गुप्ता, उन्होंने लिखा चैतन्य चरित महावाक्य। ऐसे जिन्होंने भी उनका संग किया था उन सब लोगों ने अपना अपना इतिहास वर्णन किया। लेकिन है क्या वो पता है आपको, आपके राधा रानी की कहानी है सारी। उसमें राधा का भाव लेकर भगवान ने क्या क्या किया और क्या क्या अनुभव किया, और सारी गोपियां जो थी वो सब पुरुष बनकर उसमें सम्मिलित हुई। विशाखा देवी रामानंद राय बनी, ललिता देवी स्वरूप दामोदर गोस्वामी बने, और सब सखियां चंपकलता राघव पंडित बनी। हाँ, कितने सारी गोपियां विश्वानु महाराज पुंडरिक विद्यानिधि बने, राधा रानी गदाधर पंडित बनी, राधा रानी विशोदा मैया सची माता बनी, नंद महाराज जगन्नाथ मिश्रा बने। सब लोग जितने भी गौर लीला में थे वो सब आ गए उसके अंदर अपने, तो जितने भी राधा रानी के कृष्ण की लीला में थे सब सम्मिलित हो गए उसके अंदर। और एक विशेष बात है, केवल राधा और कृष्ण की लीला में जितने लोग सम्मिलित थे केवल उतने ही सम्मिलित नहीं हुए, रामलीला में जितने थे, नरसिंह लीला में कितने थे, वो सारे अवतार में जितने भक्त थे वो सब सम्मिलित हो गए। कि हमारे भगवान ठाकुर जी हमारे प्रिय इष्ट जो है वो अभी भक्त बनकर आने वाले हैं और हमारी दिल की बात जानने वाले हैं, खोजने वाले हैं, ढूंढने वाले हैं, अनुभव करने का प्रयास करने वाले हैं। तो वो सब लोग भी आए, यानी कि प्रहलाद भी आए उसमें, वासुदेव दत्त बनकर आए, नरसिंह भगवान के भक्त आए, वराह देव के अवतार भी आए, वराह देव के भक्त भी उसमें आए। अरे महाविष्णु अपना योग निद्रा छोड़कर भाग गए अद्वैत आचार्य बनने के लिए। बोलो, तो हमेशा योग निद्रा में रहते हैं, लोगों का निर्माण करते रहते हैं, ब्रह्मांडों का निर्माण करते रहते हैं। वो महाविष्णु छुट्टी लिए वहां से कि हमारा काम सोने का है और सोके ही पृथ्वी का निर्माण करना है, ब्रह्मांडों का निर्माण करना है। छुट्टी लिया उन्होंने, बोला जाना है मुझे। सब लोग आए, सब लोग, पार्वती जी आई प्रौढ़ माया बनके, बूढ़ो शिवा बनके शिव जी आ गए, सब आ गए, सब जुड़ गए। तो ये उनकी लीला जो है, ये साक्षात राधा रानी का भाव लेकर कृष्ण भगवान ने क्या अनुभव किया, क्या लीला किया, उसका पूरा वर्णन चैतन्य चरितामृत में दिया गया है। इतनी अद्भुत कहानी है उसमें, इतनी अद्भुत कहानी। और आपका जो गहबर बन है यहाँ का, इसकी विशेषता क्या है बताओ, गहबर अपने क्या खास है, क्या खास बात है बताओ। बहुत सारी बातें हैं खास, आप एक आध तो बता दो। गहवर बंद जो है ना वो बरसाने का हार्ट है, हार्ट हृदय स्थान है वो बरसाने का। गहीवर का मतलब क्या होता है, गहीवर का मतलब होता है भावनाओं का पराकाष्ठ। एक जगह ऐसी होती है जैसे गोपियों का रास लीला जब हुआ था, गोपियों का भाव एकदम उच्च सीमा पर पहुंच गया था, चरम सीमा पर पहुंच गया था। वैसे जब राधा कृष्ण का भाव सबसे ऊंचे भाव में पहुंचता था तब वो लीला गहवर बन में करते थे। और गहवर बन की विशेष बात ये आप सबको पता होना चाहिए परमानेंटली, कि गहवर बन राधा रानी ने अपने हाथों से बनाया है, अपने हाथों से बेलियां लगाई हैं, पेड़ लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, वृक्ष लगाए हैं, सब कुछ अपने हाथों से लगाया है, सींचा है उसको अपने हाथों से, अपने देख रेख में, अपने नेतृत्व में उसको सजाया है। वो सब कमान ही कमान है वहाँ पर, सब जो दृश्य है गहवर बन का सब कमान के रूप में है। उन कमानों में लटकती हुई लताओं को एक हाथ से उठाकर दूसरे हाथ से राधा रानी का हाथ पकड़कर उनको अंदर लेके जाया करते थे। वो प्यारी जू आगे चल गहवर बन भीतर जहाँ बोले कोयल री। हरदास स्वामी जी लिखते हैं इसके बारे में, वर्णन करते हैं गहवर बन की लीला क्या है। उसी गहवर बन में वो तोता बैठा था, राधा रानी छुप गई थी और ठाकुर जी ढूंढ रहे थे, तो किसी को सबको बताया गया था, बताना नहीं मैं कहाँ पर हूँ। तो भगवान ने तोते की ओर देखा और नज़र से ही पूछा किधर है। तोते ने भी आवाज़ नहीं किया, नज़र से बताया उधर है। तो ठाकुर जी वहीं पहुँच गए तो राधा रानी को बड़ा आश्चर्य हो गया, अरे नामुमकिन है मुझे ढूंढ के निकालना, किसी के बताए बिना, अंदर के आदमी के बताए, अंदर के व्यक्ति के बताए बिना, अंदर के पार्षद को बताए बिना मेरा स्थान ढूंढ के निकालना मुश्किल नामुमकिन था। तो देखा तो तोता बैठा हुआ है, तो समझ गई तोते ने ही किया है। तोते को दंड देने के लिए दौड़ी, तोता भाग गया। वही तोता भाग के कैलाश गया, वहाँ से भाग के व्यासदेव के गुफा में गया और व्यासदेव का पुत्र बना। क्या नाम उसका? शुकदेव। उसका नाम था लीला शुक, यानी कि राधा रानी का तोता था वो, क्योंकि राधा रानी के दंड को भय से भागा वहाँ से और व्यासदेव का पुत्र बना और बाद में आचार्य बना, भागवत आचार्य। तो वो जो आपका गहवर बन है राधा रानी ने अपने हाथ से बनाया है। वैसे ही मायापुर जो है, जहाँ पर हमारी माता जी अभी चली गई ना यात्रा करने के लिए, प्रभु जी भी गए थे, मायापुर क्या चीज़ है? राधा रानी एक बार कृष्ण भगवान को मिलने गई गौलोक में, यहाँ की बात नहीं कर रहे, गौलोक धाम में। तो गौलोक में और एक गोपी है विरजा गोपी, उसके संग में थे वो। तो राधा रानी बड़ी परेशान हो गई, दुखी हो गई बेचारी वो। अगली बार गई तो खबर मिली कि वो उसी के संग में है और श्री रामा को खड़े किए हुए हैं कुंज के दरवाजे पे, और श्री रामा भी झगड़ा कर रहे हैं, अंदर नहीं भेज रहे हैं। तो श्री रामा को शाप दिया और उसको राक्षस बना दिया, शंखचूड़ राक्षस बना दिया। और शंखचूड़ राक्षस बनने का शाप मिलने के बाद श्री रामा ने राधा रानी को शाप दे दिया कि तुम अपने प्रियतम से 100 साल विरह में रहोगे, वो भी पृथ्वी पर रहोगे। इसने बोला ना तुम राक्षस बनोगे, पृथ्वी पर राक्षस बनोगे। तो बोला अच्छा, तो तुम भी पृथ्वी पर आओगे जन्म लेकर और अपने प्रियतम से 100 साल का विरह अनुभव करोगी। तो राधा रानी 100 साल विरह में रहे ना, और शंखचूड़ राक्षस बन के आया, फिर भगवान ने उसका वध किया। बड़ी सुंदर सुंदर कहानी है। शंखचूड़ को जब भगवान ने मारा तो शंखचूड़ की ज्योति जो है ना वो सुधा माँ के अंदर चली गई, बाकी सबकी ज्योति भगवान में चली गई। हाँ ऐसा है सब आनंद। तो राधा रानी व्याकुल हो गए कि बार बार ब्रजा को मिलते हैं, तो चलो मैं ऐसा एक जगह बनाती हूँ पृथ्वी पर, वो भी अपने हाथों से सजाऊंगी उसको, उसमें सरोवर बगीचा नदियाँ हाँ उपवन पेड़ पौधा सुंदर फूल फूल पंछी अलग अलग आवाज़ करने वाले, सारी व्यवस्था मैं अपने हाथ से बनाऊंगी। और हाथ से बनाया उन्होंने, और वहाँ बैठकर जो स्वयं कृष्ण के मुरली की गुरु हैं उन्होंने उस वन में बैठकर मुरली बजाई है। तब भगवान व्याकुल होकर दौड़ के आए हैं इस मुरली की आवाज़ सुनकर। तो ये नया जो है, नया वन जो है ना, वो देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। वो बोले तुम्हारा इतना सुंदर वन है, तुमने खुद मतलब मैंने खुद अपने हाथ से बनाया आपके लिए, इतना सुंदर वन बनाया आपने, इतने सुंदर पक्षी किलरव कल रहे हैं, क्योंकि आवाज़ दे रहे हैं उसके अंदर, झलकी आवाज़ सुंदर आ रही है, इतने फूलों की खुशबू आ रही है, इतने सुंदर दृश्य है यहाँ पर। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं सारे तीर्थों को यहाँ पर आके विराजमान कराऊंगा, सारे तीर्थों को आह्वान करूंगा, यहीं बसाऊंगा, और जितने मेरे भक्त हैं सब जगह ब्रह्मांड में फैले हुए हैं वो सबको यहाँ पर बुलाऊंगा और यहीं रहूंगा और यहीं लीला करूंगा। और वो क्या है? वो है मायापुर। तो ये सब मैंने क्यों बताया? गहवर बन और मायापुर में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों राधा रानी ने अपने हाथ से बनाया है और दोनों भगवान को अत्यंत प्रिय है, वो दोनों जगह भगवान निवास करते हैं एकदम प्राइवेट अंतरंग लीला करने के लिए। तो वही मायापुर है, इसलिए मायापुर और वृंदावन को अलग मत समझना। मायापुर राधा रानी की लीला का स्थान है, राधा रानी का अंतरंग जगह है वो, जहाँ पर राधा रानी के हृदय के अंदर क्या चल रहा है उसको अनुभव करने के लिए उन्होंने अवतार लेकर लीला किया उधर। 9 द्वीप है वहां पर गंगा जी के द्वारा, क्योंकि गंगा जी भी दुखी हो गई, अरे जमुना जी को इतना संग दिया भगवान ने, जमुना जी को अंग संग दिया, अरे दिन रात कूदना उसके अंदर, दिन रात खेलना उसके अंदर ग्वाल बालों के साथ, गोपियों के साथ, कि चिरहरण लीला कर रहे हैं, कभी कालिया को दमन कर रहे हैं, कितना संग दिया। अरे जन्म होते ही कूद गए उसके अंदर, गए कि नहीं, करे कोई लो करके पुकारा ना नंद बाबा ने, यानी वसुदेव ने पुकारा कि नहीं, इतना प्रेम दिया कि जन्म अभी अवतार होकर कुछ ही क्षण हो गए तो कूद गए उसके अंदर, वो भी बेचारी व्याकुल होकर ऊपर ऊपर आ रही है तो वो भी कूद ही गए उसके अंदर, फिर बचाया उसको, फिर रास्ता दिया है। तो जमुना जी का भाग्य देकर गंगा जी को ईर्ष्या नहीं हुई, लेकिन लगा भगवान हमारे पर कृपा करो, वो तो बड़ी भाग्यवान है, हम तो उसका आदर करते हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ कृपा करो। तो भगवान ने वादा किया, चलो द्वापर में कृष्ण बनकर, श्याम सुंदर बनकर मैंने जमुना जी को संग दिया, अभी इस अवतार में आपको संग दूंगा। तो गंगा जी के किनारे पे उन्होंने जन्म लिया, और गंगा जी ऐसे ही विभाजित हो गई, कहीं अलकनंदा बन गई, कहीं जलांगी बन गई, कैसे करके 9 द्वीप तैयार किए उसने, सब गंगा जी, लेकिन ऐसे नेटवर्क बना दिया पूरा, जो खाली जगह बीच में है वो एक द्वीप बन गया, और 9 द्वीप बन गए तो क्या बन गया, वो नवद्वीप धाम। मायापुर का एक नाम नववृंदावन भी है, नववृंदावन है वो, क्योंकि प्रतिवृंदावन बनाया उन्होंने वहाँ पर राधा रानी ने, और फिर राधा रानी का भाव लेकर वो सब जगह नाचे हैं, सब जगह सब द्वीपों पे नाच किया उन्होंने और लीला समाप्त संपन्न किया। उम्र के 24 साल वहाँ पर रहे वो, फिर 6 साल उन्होंने भ्रमण किया भारत भर, परिक्रमा किया भारत की हरिनाम संकीर्तन को बांटते हुए, और लास्ट के 18 साल जगन्नाथपुरी में रहे वो। और जगन्नाथपुरी में जाने के बाद कुछ समय उन्होंने लीला किया, पब्लिक लीला किया, उसके बाद वो एकांत में चले गए। बाद में उन लीला का वर्णन केवल एक घर के अंदर क्या हुआ उतना ही वर्णन है, बाहर नहीं आए, रथ यात्रा में नहीं आए, पब्लिक को नहीं मिले। 18 साल में कुछ ही साल, 2-3 साल रहे बाहर, रथ यात्रा वगैरह किया, उसके बाद जो गंभीरा में घुस गए, गंभीरा के अंदर एक कमरे में बंद रहकर उन्होंने अति उत्कट प्रेम का अनुभव किया, राधा रानी के हृदय के अंदर का जो प्रेम है उनका, उसका उन्होंने अनुभव किया। और अपने प्रिय प्राण प्रिय गोपीनाथ का विग्रह है उधर जगन्नाथपुरी में, उसके शरीर में अंतर्धान हो गए 48 साल के बाद में, पूरी तरह से राधा रानी के हृदय का जो अंदर का हिस्सा है उसमें क्या चलता है उसका अनुभव किया उन्होंने। तो गौरांग महाप्रभु आपके ही हैं, आपके राधा रानी ने वो स्वरूप धारण किया है, और श्री कृष्ण के प्रेम का जो रहस्य है राधा रानी के मन में उसको चखा है उन्होंने, उसका आस्वादन किया है, ऐसा है। अद्भुत कहानी है कि नहीं ये? हाँ, मुझे बड़ी अद्भुत लगती है कहानी है, क्योंकि ठाकुर जी क्या करते हैं उसका भरोसा नहीं है, क्या कर सकते हैं और क्या करते हैं, कोई था नहीं उसका, कब क्या करेंगे, कौन सी लीला करेंगे, लेकिन सभी लीलाओं में अद्भुत लीला कर रचाया उन्होंने, एक भक्त बनकर आए, वो सब पुरुष शरीर में आए, सब लोग ने वही संबंधों का अनुभव किया उधर भी, ललिता जी ने स्वरूप जी के साथ रूप के रूप में, विशाखा जी ने रामानंद राय के रूप में, हाँ चंपक नंद राघव पंडित के रूप में, सभी लोगों ने आकर ठाकुर जी का लीला में सहायता किया। इतना अद्भुत लीला है कि सभी अवतारों के सभी भक्त उसके अंदर सम्मिलित हैं, नारद मुनि आए श्रीवास ठाकुर बनकर, महाविष्णु अद्वैताचार्य बनकर आए, सब लोग ने अपना अपना सहयोग दिया उसके अंदर। और यहाँ आश्चर्य की बात है कि उस 9 द्वीप के अंदर एक द्वीप में अयोध्या जी हैं, एक द्वीप में जगन्नाथपुरी है, वृंदावन धाम प्रकट हो गया अंतरद्वीप के अंदर, जहाँ पर जन्म होने का उन्होंने तय किया, उसको कहते हैं अंतरद्वीप, वो मायापुर कहलाता है, अंतरद्वीप हृदय है वो नवद्वीप का, उसमें भगवान ने जन्म लिया निमाई के रूप में, और वहीं पर गोवर्धन राधा कुंड और श्याम कुंड प्रकट किया, वहीं पर गिरिराज जी हैं, वहीं पर राधा कुंड श्याम कुंड है, बोलो इतना अद्भुत धाम है वो, सब तीर्थ वहाँ पर है, जयदेव गोस्वामी का तीर्थ भी वहाँ पर है, अयोध्या जी भी वहाँ प्रकट हो गई है, सब अवतारों का, वरादेव का पहाड़ है पूरा कोलद्वीप, वरादेव ने अवतार सत्ययुग में वहाँ पर लिया था, वो जगह कोलद्वीप है, हमने अभी भी यात्रा किया था पिछले साल अधिक मास में, मुझे बड़ी इच्छा है, एक बार मैंने यात्रा किया था, सब ब्रजवासियों वो मैयाओं को ले गया था मैं, तो लक्ष्मी मैया, केला दीदी, सब 8-9 माताएं चली गई थी यहाँ से दर्शन करने के लिए गंगा जी का और नवद्वीप धाम का। जनवरी में भी अभी यात्रा है केवल ब्रजवासियों के लिए मायापुर की, यस, अगले जनवरी में पहले हफ्ते में गुप्त रूप में जाएगी यात्रा, छन्ना उतार के जरा लेकिन गुप्त रूप भी अपने के लोगों के अंदर खुला रहता है, उसका सीक्रेट मालूम है ना आपको, गुप्त कहाँ होता है, लोगों बाहर के लोगों के लिए गुप्त होता है, अंदर के लोगों के लिए सब सीक्रेट खुला रहता है, आपको बता रहा हूँ मैं। तो यही बात केवल बताना चाहता हूँ कि गौरांग महाप्रभु आपकी राधा रानी है, इसको मत भूलना। केवल यहाँ पर जो लीला किया वो भगवान के रूप में किया, ऐश्वर्य के साथ, माधुर्य के साथ किया, वहाँ भक्त के रूप में किया, इसलिए होली नहीं खेला उन्होंने, क्योंकि वो भक्त लोग हैं ना, वो भक्त के रूप में लीला कर रहे हैं, भक्तों को करना चाहिए वैसे किया उन्होंने सब कुछ, बहुत सुंदर लीला है। हाँ, जय श्री गौरांग महाप्रभु की, श्रीमती राधा रानी की, ब्रज लीला की, गौर लीला की, जय जय श्री राधे।